देह का कारण करता जो देह का कारण करता जो सदा ध्यावो ठाकर सोए सदा ध्यावो ठाकर सोए
सदा ध्यावो ठाकर सोए सदा ध्यावो ठाकर सोए
देह का जो नित पालन हारा देह का जो नित पालन हारा
देह का जो नित पालन हारा देह का जो नित पालन
भज विषम्भर परम सुख सारा भज विषम्भर परम सुख सारा
भज विषम्भर परम सुख सारा भज विषम्भर परम सुख सारा
देह को जो दे मान बढ़ियाई देह को जो दे मान बढ़ियाई
को जो दे मान बढ़ियाई देह को दे मान बढ़ियाई
इस खातर की हो शरणाई इस खातर की हो शरणाई
इस खातर की हो शरणाई इस खातर की हो शरणाई
देह को जो सर जीवत करी देह को जो सर जीवत करी
देह को जो सर जीवत करी देह को जो सर जीवत करी
सदा ध्याओ साचा हरी सदा ध्याओ साचा हरी
सदा ध्याओ साचा हरी सदा ध्याओ साचा हरी
बारंबार करो प्रणाम बारंबार करो प्रणाम
बारंबार करो प्रणाम बारंबार करो प्रणाम
साचाखातर परम सुख खानो साचाखातर परम सुख खानो
साचाखातर परम सुख खानो साचाखातर
देह का कारण करता जोये सदा ध्याव आतर से। देह का जो कारण है और कर्ता भी है सदा ध्याव ठाकर से। तो देह का कारण करता है वही देह का स्वामी भी है, इसलिए इसका नाम ठाकर है या ठाकर। कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि वो प्रभु देह का कारण कैसे। सब जानते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, तो फिर वो प्रभु देह का कारण कैसे। पिछला जन्म जैसा भी मेरा था वहां मैं क्या करता हूं, कैसे जीता हूं, जैसा मैं इस जन्म में जी रहा हूं, मन इंद्रिया मेरी यहां पर भी है, मन इंद्रिया मेरी पिछले शरीर में भी, इनके द्वारा जो भी कर्म किए उसका जो परिणाम था सुख और दुख, मान अपमान, मिलना बिछड़ना, और जो गुण थे सतगुण रजगुण तमोगुण, उनसे प्रभावित होकर जैसा मैंने अपना स्वभाव बनाया, जैसे अपने मैंने संस्कार तैयार किए, वो सब उस शरीर के साथ ही छूट गए। क्योंकि मेरे बारे में सत्य ये नहीं, शरीर छूट गया लेकिन सारे संस्कार सारे स्वभाव मेरे, उसको मन बुद्धि कहते हैं या केवल मन कह दीजिए उसको, वो सारे के सारे बच गए, उसमें सुरक्षित रहे। अब उसके पश्चात जब मेरा शरीर ही नहीं रहा तो मैं कर्म करने लायक रहा ही, तो क्या मैं नया शरीर स्वयं तैयार कर सकता हूं। लेकिन मुझको पता है वर्तमान जन्म मुझको मनुष्य शरीर के रूप में मिला है, तो मनुष्य शरीर देने वाला मैं तो नहीं हूं। जो कुछ भी मैं पिछले जन्म में समझता था वो तो शरीर ही था। इस जन्म में मैं मनुष्य बना हूं, तो मनुष्य बनाने का कारण कौन है, वो प्रभु ही तो है, वो ठाकुर ही तो है, वो स्वामी ही तो है। तो आज जो कुछ भी मैं हूं वो प्रभु के कारण है। तो मैंने मनुष्य शरीर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया, और इतना ही नहीं, वो इस शरीर के कारण भी है और करें करता भी है। देह का कारण करता जो है, जो इस देह का कारण करता है सदा ध्याव ठाकुर से, वही शरीर का मालिक है, वही शरीर का स्वामी। करता कैसे है फिर, मैं तो दिन भर कर्म करता हूं, मुझे एक बार भी शक्ति आ गया ईश्वर करता। परिवार में किसी से पूछ लो, हम एक दूसरे को ही कारण करता बताएंगे, इसको पर हमारी कोई सोच नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि देह मुझको प्रभु ने दी, मानव देह दी, पर खाली देह ही नहीं दी है, इस देह का संचालन उसके पास है। इस रूप में ईश्वर सर्वभूतानां यत देशे अर्जुन तिष्ठति धाम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो कह क्या रहे हैं, मैं अपनी माया से इस शरीर में स्थित प्राणियों को अपनी माया से संसार में भरमाता हूं, घुमाता हूं। जब इस शरीर का संचालन प्रभु के पास है, इसके प्रारंभ के अनुसार जो उन्होंने जन्म लेते ही निर्धारित कर दिया, ये शरीर वैसे ही संसार में घूमेगा, वैसे ही परिस्थितियां इसके सामने आएंगी। बताइए, मैं अपने आप को आजाद समझ रहा हूं, स्वतंत्र समझ रहा हूं, लेकिन बना हुआ हूं मैं ईश्वर के हाथ, ईश्वर की डोर से, ईश्वर की माया से मैं बना हुआ हूं। तो इस जन्म में मैंने अच्छा जन्म यदि व्यतीत करना, मुझे अच्छा भाग्य मिलता, उसका तैयारी मैंने उसकी तैयारी कहां करनी थी, पिछले जन्म में करनी। इसलिए जिस मनुष्य के अंदर ये भाव, ये निर्णय उसकी बुद्धि में बना रहता है कि इस देह के कारण कर्ता प्रभु स्वयं है, तो मैं प्रभु की याद करूंगा या दुनिया की याद करूंगा, तो प्रभु का विश्वास आपको पिछले जन्म की याद दिलाता है, फिर वर्तमान जन्म की मजबूरियों की भी याद दिलाता है। यदि मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूं, मेरे मन में लालसा है, बचपन से मेरा मन प्रभु भक्ति में लगता जो नहीं लगा, क्योंकि कर्म ऐसे करके आया था। वर्तमान जन्म में मुझको सत्संग सुनने का मौका दिया प्रभु, इस विचार को समझने का मौका दिया, अभी भी मैं ना समझो गलती कर जाऊं तो अगला जन्म मैं इसी जन्म में बर्बाद करके जाऊंगा, अगला जन्म मैं वर्तमान जन्म में बर्बाद करके जाऊंगा, ऐसे मेरे अंदर ये सोच नहीं। इसलिए वही प्रभु इस वाणी के रूप में मुझको समझा रहा है, देह का कारणकर्ता तू नहीं है, देह तेरी देह का कारणकर्ता मैं हूं। इसीलिए कह रहे हैं कि सदा ध्याओ ठाकुर सो, इसलिए उस ठाकुर को, अपने उस मालिक को तू सदा याद रख, सदा उसका ध्यान रख। सदा का मतलब होता है कि एक पल भी उसकी याद ना भूलना, कि वो मेरा मालिक है, मेरा कल्याण करने वाला है। तो ऐसे स्वामी को, ऐसे मालिक को मैं क्यों भूल जाता हूं, क्योंकि हर चीज का कारणकर्ता मैं अपने आप को समझता हूं और दूसरों को समझता हूं। ईश्वर का ईश्वर की तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, मेरी बुद्धि ये निर्णय करती है। इसलिए सारी जिंदगी मैं भयंकर गलतियां करता रहता हूं, तो गलतियां कर करके भी मैं अपने अहंकार को बढ़ाता रहता हूं और जन्म विफल होना। मनुष्य जन्म दिया मिला था स्वर्ग की तैयारी करने की, स्वर्गलोक में जीते ही पहुंचने के लिए, और दुनिया वाले नाटक करते हैं, मुझको स्वर्गलोक पहुंचा देते हैं, मुझको तो पता ही नहीं होता कि अगला जन्म भी मेरा नरक लोक में होना, कोई मुझे स्वर्गलोक में नहीं पहुंचा सकता। तो आगे कहते हैं, देह का जो नित पालन हारा भज विशंभर परम सुख सा, इतना ही नहीं, ये कारण करता है देह को वो पालन करने वाला भी है, मां के गर्भ से लेकर मां की गोद में जो बालक आता है कौन उसको बड़ा करता है, कौन उसको पालन करता है, वो प्रभु ही पालन करता है, वही उसको बड़ा करता है। जितनी प्रारब्ध में आयु मिली है उसी दिन तक उसका पालन करेंगे, उसके बाद शरीर उसका नष्ट हो जाता है, हम उसको नहीं बचा पाते। याद रखिए, देह का पालन हारा वो प्रभु ही है, भज विशंभर परम सुख सा, इसीलिए उसका नाम विशंभर है। हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा उत्पन्न करने वाला है, विष्णु पालन करने वाला है, विशंभर विष्णु का ही नाम है, वो मेरा पालन करता है, छोटे से लेके बड़ा तक, बड़े से लेके बुढ़ा होने तक, जितने दिन में जीवित रहता हूं मेरा पालन वो ही करता है। कहते भज विशंभर परम सुख सा, और पालन ही नहीं करता है, कहते परम सुख सार, वो परम सुख का सार है, मुझे परम सुख चाहिए जिसमें दुख मिश्रित ना हो, बनना ही बनना हो, बिगड़ना ना हो, शांति हो अशांति ना हो, मेरी अंदर से चाहना इस चीज की, लेकिन मैं इस विशंबर को, इस प्रभु को भूला रहता हूँ, उसकी तो मुझको जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसीलिए जब भी घर का कोई काम याद आता है तो सबसे पहले मैं ईश्वर की याद को, ईश्वर की पूजा को ही छोड़ दूँ। काम ज्यादा जरूरी है, प्रभु ज्यादा जरूरी है, मेरी बुद्धि का निर्णय यहाँ पर। इसीलिए वाणी याद दिला रही है, देह का जो नित्य पालन हरा भज विशंभर परम सुख सार, वो परम सुख की सार है। परम सुख उसे कहते हैं जो दुख में कभी बदलता नहीं। मेरा तो हर सुख दुख में बदल जाता, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, तो वाणी दुख का रूप कह रही है, क्योंकि सुख जाएगा तो आपको दुखी तो देगा, वह क्या देगा। ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छू, तुम्हें ये विचार करना, क्योंकि मैं तो इसकी जरूरत नहीं समझता। सुख प्राप्ति के कैसे बड़े से बड़े प्रोग्राम बना लो, तुझे सुखी हो जाओ, परिवार को सुखी कर दो, मेरा यही लक्ष्य होगा। लेकिन जब मैं खुद ही कभी सुखी नहीं हो पाया तो परिवार को कैसे सुखी कर दू, उसके बारे में मैंने विचार करने की जरूरत ही नहीं समझी। इसलिए प्रभु ही कृपा करके वाणी रूप में ज्ञान देते हैं और सोचने को मजबूर करते हैं, क्योंकि ठीक सोचने की कोशिश कर संसारी तरीके से मत सोच। कहते हैं कि वो परम सुख की सार है, इसीलिए उसका तो भजन कर, उसका तो स्मरण कर, उसके लिए जीना सीख। आगे कह रहे हैं, देह को जो दे मान बड़ी आई, किस ठाकर की हो शरण। देह को भी मैं अपना स्वरूप समझता ही हूं और इसकी मान बढ़ियाई के लिए मैं जीता हूं, मेरा सम्मान हो जाए अपमान में। यदि कोई अपमान कर दे तो मैं कैसे उसको दुश्मन की निगाह से देखता, मुझको ये पता नहीं होता। मान बढ़ियाई की रक्षा भी प्रभु ही कर, तेरे भाग में यदि मान मिलना है तुझको ऐसी पोस्ट दे देंगे, उसको ऐसा संग दे देंगे, उसको ऐसी परिस्थिति देंगे कि दुनिया तेरा सम्मान। ये कहां से आएगा, तेरे प्रारंभ में है तब ये आएगा, इसका मुझे उस प्रारंभ का मुझे पता नहीं। कौन देगा, प्रभु उसकी व्यवस्था करते हैं। भाग में भी मान है मिलेगा और अपमान भाग में तो अपमान मिलेगा, क्योंकि मान से मुझे सुख मिलता है, अपमान से दुख मिलता है। तो वर्तमान जन्म में मैं वास्तव में पूरी तरह से प्रभु के हाथ में गुलाम हूं, लेकिन मेरी संसारी बुद्धि यही निर्णय करती है कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, जो चाहूं जैसा चाहूं कर सकता। वो बात भी ठीक है, प्रभु ने मुझे स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन शारीरिक स्वतंत्रता नहीं दी, उसको मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता दी है। मन में जैसे चाहे संस्कार बना सकता है, बुद्धि में जैसा ज्ञान चाहे उसको सीख सकता है, उसका निर्णय तो अपना बदल सकता है। तो कहते हैं, देह को जो दे मान बड़ी आई, इस ठाकर की हो सर्व, उस स्वामी की, उस मालिक की शरण में तू जा जो तेरी मान बढ़िया का भी मालिक है। देह को जो सरजीवत करी, सदा ध्याओ साचा। बताइए, देह को जो सरजीवत करी, सदा ध्याओ साचा। सरजीवत का मतलब क्या है, देह को जो जिंदा रखा, इसका जो जीवन है। मेरे शरीर में जान है ना, सब जानते हैं, मेरे शरीर में जान है, लेकिन उस जान पर किसी का भी कमांड नहीं है, और बिना उस जान के ये देह एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकती। जो मेरी देह से इतना प्रेम करते हैं, मेरे ही घर वाले, इसी देह को जल्दी से जल्दी वो शमशान भूमि में पहुंचाने की कोशिश करें। देह की जो कीमत है मेरी, मानव देह की कीमत है, वो जीवन के कारण है और उस जीवन का स्रोत वो प्रभु। सदा ध्याओ साचा हरि, वो हरि है, सच्चे हरि है। सच्चा क्यों कहा गया? कि उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव स्थित है, सदैव रहते हैं, और जो भी उनका संग करता है वो भी सदैव रहता है, उसकी मौत नहीं होती। देह की मौत होने से उस जीव की मौत नहीं होती जो हरि का हो। तो बताइए मेरी कैसी बुद्धि है? जो प्रभु मेरा जीवन रूप है उनको तो मैंने छोड़ रखा, उसका तो विज्ञान सीखने की जरूरत ही नहीं सीखी। और जिसमें मैं गुलाम हूं, जो प्रारब्ध जो कुछ भी शरीर का है, जो होना है शरीर से होगा, जो नहीं होना नहीं होगा। अब महाभारत का इतना बड़ा कांड हो गया और अर्जुन को कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े करके या खड़े होकर संदेश दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि इस युद्ध का कारणकर्ता वास्तव में मैं स्वयं हूं। इसकी रचना पहले ही हो चुकी है, तो विचार करो युद्ध कब होता है? जब एक राजा गलती करता है या कुछ लोग गलती करते हैं और दूसरे लोग उस गलती का बदला लेना चाहते हैं, तब दोनों में युद्ध होगा। अब बताइए इतना बड़ा महाभारत है, पूरे भारतवर्ष से सारे राजा इकट्ठे हुए युद्ध करने के लिए। अब कहेंगे आप दुर्योधन की गलती थी उसके कारण, दुर्योधन की गलती थी या उससे करवाइए? यदि दुर्योधन गलती नहीं करता, यदि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, यदि कौरवों ने 5 गांव पांडवों को दे दिए होते तो ये युद्ध क्यों हो? देखने में ऐसा लगता है कि ये मुख्य कारण थे युद्ध होने। लेकिन जब युद्ध होना है तब गलती करने वाले भी मौजूद होंगे, उनसे गलती करवाई जाए, क्योंकि युद्ध होना है। अब बताइए वर्तमान युद्ध का कारण वास्तव में देखा जाए तो जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार उन्होंने बनाए, जो गलतियां उन्होंने की, जो स्वभाव उन्होंने बनाया, उनका जो प्रारब्ध तैयार हुआ वो पिछले जन्म के कारण तैयार हुआ। और इस जन्म में तो केवल वो जैसे घोड़े के हाथ, घोड़े की लगाम सारथी के हाथ में रहती है, उसी प्रकार से प्रभु के हाथ में मेरी लगाम रहती है प्रारब्ध की, और वर्तमान शारीरिक जन्म मेरा ऐसे चलता है। वहां वो किसी ने कोई गलती नहीं करी, वो तो युद्ध हो चुका, कृष्ण कह रहे हैं युद्ध हो चुका। सिखाया क्या उन्होंने अर्जुन को? केवल एक चीज सिखाई, तू इस युद्ध को मेरे हुक्म में होता हुआ देख। और उसकी बात जब समझ में आ गई तो उसने एक ही बात कही अर्जुन ने कि स्मृति लब्ध, मुझे स्मृति प्राप्त हो। क्या स्मृति प्राप्त हो? इस जगत का, इस युद्ध का कारणकर्ता कोई नहीं, प्रभु आप ही हो। तो उसके अंदर वो मैं करता हूं, मैं युद्ध जीतूंगा, मैं युद्ध हारूंगा, ये उसके से निकल गया। महादेव ये कहते हैं प्रेमी कर्तापन ही तेरी मूल वासना, क्यों? क्योंकि कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार, आवागमन दुख सार। संसार में आना जाना यही तेरे दुख का सार है, उसका मूल क्या है? कर्ता। कर्तापन क्यों है तिरंगा? क्योंकि तू अपने आप को शरीर समझ रहा है, प्रारब्ध रूपी कर्म सारे शरीर से हुए, यदि तू शरीर है तो तू ही तो करता। तो अध्यात्म विद्या क्या है? ये इसको अमृत विद्या क्यों कहते हैं? कि ये विद्या तुझको सिखाती है तो जीव है तो देह नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तो इसको एक करके देखा, तू एक करके भी नहीं देखा, केवल शरीर से। अब बताइए इस एक गलती की मैं कितनी सजा भोगता हूं, कितने जन्म भोगता हूं। तो वर्तमान जन्म में बड़े भाग से पूर्व गुरु का ज्ञान मिलता है, पूर्व गुरु की संगत मिलती है, पूर्व गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, और फिर भी मैं चूक जाऊं तो फिर मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मनुष्य और कौन होगा धरती पर। सारी जिंदगी मैं दूसरों को गलती करते हुआ देखता, भले ही देखता रहा, मेरे छात्रों भी लोग गलती भले ही करते रहे, लेकिन मैंने होश में जीवन जीना है। इसीलिए मेरे जीवन का कारणकर्ता प्रभु है और वो अंतर्यामी है, मैं भी अंतर्यामी, मेरा मन भी अंतर्यामी है, बाहर का रखा हुआ। इसलिए प्रभु की याद अंदर होती है, बाहर नहीं होती। वो प्रभु मेरा जीवन है, वो प्रभु मेरा लक्ष्य है, मेरी मंजिल है। उन प्रभु का संग छोड़ देता हूं संसार में कितना परेशान होता हूं, पास जीवन का खुद विशेषण कर सकता हूं मैं कितना परेशान रहा। यदि मैंने सही विचार किया तो अगले जन्म की तैयारी मैं इस जन्म में करके जाऊं। इसी कहते हैं कि देह को जो सरजीवत करी सदा ध्याओ साचा, वो सच्चाई सदा ध्याओ निरंतर जाओ। अंत में कह रहे हैं बारंबार करो परिणाम साचा खाकर परम सुख। वो जो परम स्वामी है मेरा, वो खाली परम स्वामी नहीं है, परम सुख धाम, परम सुख धाम, वो सुख जिससे ऊंचा सुख संसार में होता ही है, उसी को शांति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। वो इस देह के अंदर मौजूद है, कहते हैं बारंबार करो प्रभु, इसीलिए बार बार उस प्रभु के परायण हो। कारण करता वो प्रभु, मैंने उन प्रभु के परायण गुना है, अर्थात प्रभु को कारण करता हमेशा जानना है, ध्यान रखना है। तो उसको कारण करता जानोगे तो उसकी नेचुरल वे में आपको निरंतर याद अंदर आती ही रहे। संसार के कर्म कर्तव्य भाव से करोगे, ये ध्यान में रखते हुए ये शरीर प्रारंभीन है, इसलिए मैंने ठीक ही करने की सोचनी है, गलत करने की नहीं सोचनी। लोग कैसा करते हैं वो मालिक, उनका प्रभु मालिक, मैंने जो सोचना है ठीक करने की सोचनी है, आगे प्रभु मालिक। आप तो नहीं पता क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन सोचने के लेवल पे आप स्वतंत्र हो कि ठीक सोचो, ठीक करने की कोशिश करो और निरंतर प्रभु का ध्यान रखो, जो आपके मालिक है, जो आपकी देह में उपस्थित है, उन प्रभु को भूल कर यदि मैं संसार का होकर जिया, फिर एक भयंकर भूल यहाँ कर दूंगा मैं, मेरा वर्तमान जन्म तो गया है, अगला जन्म भी इसी प्रकार से व्यर्थ चल रहा है। जन्म ना पढ़ाई से व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, मेरी दोचारी से, मेरी समझदारी से, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार को बदलना होता है, वैसा ही मैंने जीवन को बनाया, तब जाकर सही सही।